ओम शांति। वैराग्य सुन के तो डर जाते होंगे सब कि तो घर से भागना पड़ेगा। नहीं, घर से भाग के जाने वाले भी घरों में ही रहते हैं। झोपड़ियों का तो समय बीत गया, गुफाओं का भी समय बीत गया। आज की मुरली पहुंचो सवेरे, कर्मातीत याद है, याद कर लो कर्मातीत। बहुत खुश रहना, नशे में रहना, और तीसरी बहुत अच्छी बात थी सुख देना, दुख नहीं देना। इसमें तो लोग ध्यान रखते हैं पर ले लेते हैं ज्यादा। कोई कुछ कह दे तो दुखी हो जाते हैं, साथ में ये भी कहते हैं हम तो किसी को दुख नहीं देते, ये पता नहीं हमें दुख क्यों देते हैं। दुख ना लें, ताकत है। बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है, हाथ तो सभी उठा देंगे मैं आपसे पूछूं तो। पर दुख न लेना, दुख की फीलिंग न रहे, इस पर सभी काम करेंगे। कर्मातीत की एक दो बात याद दिला दूं। सर्वोच्च स्थिति है कर्मातीत स्थिति, जिसमें पहला काम हमें करना होता है विकर्म सभी नष्ट, विकर्मों के बंधन से आत्मा मुक्त। और विकर्मों के बंधन से मुक्त होने से विकर्मों का जो इफेक्ट रहता है जीवन पर वो भी खत्म हो जाता है। विकर्मों के कारण ही बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, विघ्न हैं, संबंधों में कड़वाहट है, बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो पाप कर्मों के कारण है। कुछ संस्कारों के कारण भी होता है, पर पाप कर्म ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो सभी को योग पर बहुत ध्यान देना है ताकि विकर्म नष्ट हों। मैं पहले ही आपको कह दूं, इस भट्टी से अपना एक सिंपल प्लान करके जाना कि हम वहां रहते हुए ये अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप वहां कहां रहते हैं। काम आना शहर नहीं, आपकी परिस्थितियां कहां हैं, आपका कर्म कितना भारी है या हल्का है, कर्म में बहुत बिजी होते हैं या हल्की ड्यूटी है। और एक चीज और, हमें काम करते हुए, बहुत सारे काम बहनों माताओं को ऐसे हैं जो रोज वही काम करने हैं, लेकिन वही काम करते हुए हम कर्मों में रोज लिप्त तो नहीं होते। कर्मातीत की परिभाषा में आज बाबा ने कहा, कर्म ऐसे करो कुछ किया ही नहीं। दूसरी बहुत अच्छी लाइन थी, कर्म के परिणाम का जो प्रभाव होता है वो स्पर्श भी न करे आत्मा को। गहरी बात है। अध्यात्म जगत में लाखों भाई बहनों में से कुछ ही इस तक पहुंचते हैं, गिनती के उंगलियों पे गिनने वाले। कर्म भी स्पर्श न करे, कर्म का परिणाम भी स्पर्श न करे। मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। कर्म जब करते हैं तो कर्म के ही संकल्प, कर्म थकाता है, कर्म भिन्न भिन्न तरह से इफेक्ट डालता है, उससे ऊपर उठ जाए आत्मा। और दूसरा, कर्म का परिणाम। मान लो आप लोगों के घर में मेहमान आए हैं, आपने भोजन बहुत प्यार से स्वादिष्ट बनाया है, पर दो लोग ऐसे जिनको अच्छा नहीं लगा। अभी सिचुएशन पे विचार करो, मेहमान और उनको भोजन अच्छा ना लगे, वो आपका भाई हो जिसको बचपन से आपने बहुत प्यार किया, बहुत प्यार से भोजन बनाया था, लेकिन आज उसे अच्छा नहीं लगा है। उसने थोड़ा बहुत बोल भी दिया या चेहरे से दिखा दिया, तो उसका इफेक्ट आप पर आएगा या नहीं? बोलो बहने, बोलो, आएगा ना आए, यह है कर्मातीत अवस्था। हमने कर्म किया, गीता का महावाक्य ले लें इसमें, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब मान लो अब आप ज्ञान में आ गए, आपने मिर्ची कम खाना शुरू कर दिया, आपके मेहमान मिर्ची ज्यादा खाते हैं, उनको मजा नहीं आया, क्या करेंगे? मिर्ची कटोरी में डाल के रख लो टेबल पे, लो भी डाल लो जिसको जितना डालना, ये भी तो हो सकता है या नहीं? हंसी की बात सुना दूं, एक बार मैं आंध्र के ऐसी जगह में गया जहां आदिवासी एरिया है, उनमें से हिंदी किसी को भी ना आए। मैंने कहा जब खाना खा रहे थे, बहन जी मिर्ची थोड़ा कम डाला करो। अब बहन जी की समझ में नहीं आया, आधी कटोरी भर के मिर्ची रख दी टेबल पे, डाल लो। अब क्या करें, हमने किसी को ढूंढा जो थोड़ी हिंदी समझता हो, उनको सिखाए। तो कर्म का परिणाम इफेक्ट न करे, थोड़ा बहुत तो करेगा, धीरे धीरे उससे बाहर निकल जाएं। क्या अभ्यास करेंगे? जैसे जबरदस्ती तो नहीं किया जाएगा ना कि कर्म हमें छुए नहीं, कर्म का प्रभाव हम तक पहुंचे नहीं, कोई गाली दे दे तो उसको गले से लगा लें, सहज काम है, भगवान ने तो कह दिया गाली देने वाले को गले से लगा दो, दीदी ने भी कह दिया मन से, लेकिन क्या संभव होता है? बहुत ऊंची स्थितियां हैं ये। तो कर्म करके अपने कर्म को बाबा को अर्पित करने की आदत डाल लें सभी, तो धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि कर्म के परिणाम का प्रभाव कम होने लगा और वो खत्म होने लगा। इसकी सभी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। कर्म भी बाबा को अर्पित और कर्म का परिणाम भी बाबा को अर्पित, बात सूक्ष्म भी है, अभ्यास करने से इसके बहुत अच्छे अनुभव हो जाएंगे। सभी को वर्तमान समय की गति के अनुसार अपने मन को खुश रखने की कला सीखनी है, ये कला है और ये कला रोज मिलती है हमें। सभी को एक होमवर्क करना है, बोलो भाई लोग बताओ करेंगे? छोटा सा ऐसा काम नहीं है जो आपको भारी लगे। मुरली सुनते हुए रोज कम से कम एक पॉइंट खुशी और नशे की मुरली से नोट करनी है। एक अच्छी डायरी बनाओ, डायरी तो सभी अच्छी होती हैं, अच्छी कहने का अर्थ है जिसमें एक पेज पर तीन चार पॉइंट ही आप लिखेंगे मोटे मोटे अक्षरों में। बाबा ने मुरली में आते ही कहा, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, किसके सामने बैठे हो। उस टाइम इस खुशी और नशे को अनुभव भी करें और इसे नोट भी करें। कभी कभी पढ़ लिया करें बीच बीच में, तो वो एक पॉइंट हमें खुशी देती चलेगी। दूसरी बात भी मैं आपको कह देना चाहता हूं, वैराग की बात पर आने से पहले, इस संसार में भय दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, डर और विनाश काल तो डराएगा ही, सब जानते हैं विनाश, माना ही डर ही डर, भयभीत होकर लोग मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इस भय से स्वयं को बचाना है। कैसे बचाएंगे? दो प्रैक्टिस करेंगे रोज, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं मरती नहीं। बहुत बहुत बार अपने को ये संकल्प देते चलो, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मरते ही नहीं, मुझे एटम बम की अग्नि भी नहीं जला सकती। जला सकती है क्या आत्मा को? कोई अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकती। अपने को बार बार संकल्प देंगे तो भय जो अंदर छुपा हुआ है वो निकलता जाएगा। दूसरी बात, सवेरे उठते जिनको भी भय हो, मैंने कहा इसका कोई कारण नहीं है, आजकल ये बीमारी बढ़ती जा रही है, बिना कारण का भय संसार को अपने चक्रव्यूह में फंसाता ही जाएगा दिनों दिन। इसलिए रोज सवेरे उठकर 7 बार ही याद कर लेना, केवल 7 बार। किसी को ज्यादा भय पैदा हो गया हो तो 21 बार लिखेंगे, मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं। टीचर बहने भी नोट कर लें, कराना है आपको ये सबको, क्योंकि भय के पेशेंट आपके पास अब आगे बहुत आएंगे, दुनिया में भय बढ़ता जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं, कोई भी लिख लो। और जो ऐसे लोग आपके पास आए जिनको भी कुछ ज्ञान नहीं है, उन्हें भी शुरू कराना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। धीरे धीरे करना, रटना नहीं, ये मंत्र की तरह, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, स्वीकार करते हुए, मैं हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। त्याग तपस्या और वैराग्य, तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आपने कभी बाबा की मुरली सुनी हो, नहीं तो मैं उसका सार बता रहा हूं आपको, एक पूरी मुरली। त्याग तपस्या सेवा पर चलिए, दो चली थी साथ साथ, अव्यक्त मुरली। जितना त्याग होगा उतनी ही तपस्या होगी। त्याग को बाबा ने बहुत गहरा कर दिया था, मोटा नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग, उतनी ही तपस्या होगी। और जितना त्याग और तपस्या होगी उतनी ही सेवा बढ़ेगी। तीनों की सूक्ष्म गति, तपस्या से वातावरण बनता है, वाइब्रेशंस बनते हैं और आत्माओं को आने का अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होने लगता है, आकर्षण होने लगता है। त्याग का भी बीज है वैराग्य। बाबा ने आते ही हमें वैराग्य के लिए कौन सी बात कही? आने से ही शुरू कर दी थी वो। बोलो कौन समझते हैं इस बात को? आने से ही 36 से ही, 1936 याद करो, ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, अब तुम्हें सब कुछ छोड़कर घर चलना है। 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, चलना है, चलना है तो सब कुछ यहीं छोड़कर चलना है। और एक चीज जोड़ दें, सब कुछ यहीं छोड़कर और सोचो, मैं सोचने का टाइम दे रहा हूं, सब कुछ यहीं छोड़कर और बोलो बाबा के साथ तो चलना है, बाबा से सब कुछ लेकर खजानों से भरपूर होकर फिर जाना है। दो शब्द बोलते हैं ना बाबा, संपूर्ण बनो संपन्न बनो। कई लोग इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है ये जानते नहीं। संपूर्ण बनना, इसको सहज भाषा में समझ लें, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होकर 5% हम चार्ज करने लगते हैं ना, 100 पर पहुंचा देते हैं। आत्मा को भी 100 डिग्री तक पहुंचाना यह परफेक्शन संपूर्णता। चार्जर से जोड़ दें, सुप्रीम से, उससे हमें शक्तियां मिलेंगी, हमारी परसेंटेज बढ़ने लगेगी। संपन्न का अर्थ है सर्व खजानों में भरपूर। इस पर क्लासेज हैं बहुत। सर्व खजानों में भरपूर, संपूर्ण संतुष्ट हो गए हम, सब कुछ मिल गया। कहने से नहीं, गीत गाने से काम नहीं चलेगा, बाबा मिला सब कुछ मिल गया वो तो अच्छी बात है, लेकिन इतने भरपूर कि आत्मा संतुष्ट हो गई, तो न किसी की याद रहेगी न कोई प्यास रहेगी। त्याग और वैराग्य, वैराग्य से त्याग आप ही होने लगता है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल सी चीजें बता दूं जिनका वैराग्य सबको लाना है। देखो बाबा की साधनाओं की गति कितनी सूक्ष्म है। रहो सबके साथ, परिवार को बच्चों को प्यार भी दो लेकिन डिटैच रहो। संन्यास से बहुत बड़ी चीज, संन्यास में तो छोड़ के चले जाओ हो गए डिटैच। इधर सबके साथ रहो, उन्हें प्यार दो, प्यार के सागर के बच्चे प्यार बांटो और निर्मोही बन जाओ। देखो कितनी गुह्यता है। सब साधनों को यूज करो, अच्छा भोजन खाओ, अनासक्त हो जाओ। ये नहीं भोजन छोड़ दो, बॉयल सब्जी खाने लगो तीनों टाइम हम तो अनासक्त रहेंगे। खाओ अच्छी तरह, साउथ वालों को लाल मिर्ची चाहिए खाओ, इमली बहुत चाहिए खाओ, लेकिन यहां आए कभी न मिले तो भी आनंद हो। बाबा ने इसके लिए एक बहुत सिंपल चीज कही है कभी, उस जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चाहे तुम्हें 36 प्रकार का भोजन मिले, चाहे दाल रोटी, मैं कहता हूं अचार रोटी, दोनों में समान आनंद हो। चाहे हजारों की सभा के बीच में भाषण करने को मिले और चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले, दोनों में समान सुख हो। यह है श्रेष्ठ योगियों की अनासक्त स्थिति। ठीक है, खाने को बाबा मना नहीं करते कि समोसे न खाओ, खाओ, पर उसमें आसक्त न हो जाओ। आसक्त का अर्थ बड़े टेस्टी बने, मिल तो दो ही रहे हैं, टेस्टी तो बहुत हैं, खा लिए ज्यादा फिर बीमार हो गए, वो आसक्ति। तो जीभ पर इतना कंट्रोल कि एक ही मिल रहा है उसमें भी तृप्त, नहीं तो जीभ लपलपाती रह गई है। बड़ा मजा आ रहा था लेकिन मजा बिगड़ गया। अनासक्त, तो वैराग्य किन किन चीजों से चाहिए बताओ अब। चलो योग कर लो और सोच लो। वैराग्य, इस संसार में चारों युगों में सबसे बड़ा सुख है कौन सा है? थोड़ा हाथ उठा के बोलेंगे एक ही? नहीं, थोड़ी क्लियर नहीं हुआ मुझे। खड़े होके जोर से बोल दो। क्या बोला भाई पहले? नहीं, तभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। क्या, किस चीज का? अतीन्द्रिय सुख। और ये सुख मिलता है, देखो अतीन्द्रिय सुख को ज्यादा भारी चीज नहीं समझना। जब हम बाबा से योग लगाते हैं और हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए भी स्थिर हो जाए, बहुत सुख मिलता है। सबको अनुभव होगा जरूर है, बहुत सुख मिलता है। मुरली सुनते हैं, बहुत सुख मिलता है। आपने कोई सेवा की बहुत अच्छी, जो खुशी होती है वो भी अतीन्द्रिय सुख माना जाएगा। किसी को देने का सुख, वो भी अतीन्द्रिय सुख है। आज था ना पुण्य आत्माएं, देने का सुख, देने का संस्कार, बहुत सुंदर संस्कार है। देने का संस्कार उनमें ही होता है जो राजा रहे हैं। जो राजा रहे ही नहीं, उनको लगता है इसे क्यों दे दूं, मेरा काम हो जाएगा, क्यों दे हम, हमारी जिम्मेदारी है क्या इसे देना, छोड़ो अपना कमाए खाए, बिन बिन विचार चलेंगे। भारत की परंपरा अगर, सभ्यता को आप जाने, जो बड़ी आयु के शायद उन्हें पता हो, हमारे भारत में ये कल्चर होती थी गृहस्थियों की, किसी को खाना खिलाकर फिर खाना खाएंगे, किसी सन्यासी को भोजन खिलाकर फिर भोजन करेंगे। सन्यासी बहुत आते जाते थे, लेकिन और भी कोई गरीब है, कोई ब्राह्मण है, फकीर, वैसे बहुत आते थे मांगने वाले। किसी को कुछ देकर फिर स्वीकार करना, ये इस महान देश की महान परंपरा रही है। तो देने की वृत्ति, तो सबसे बड़ा सुख है। अब इन सबको एक चीज में ही डाल दें, राजयोग का सुख। राजयोग अर्थात भगवान के साथ रहने का सुख। राजयोग की बाबा ने कभी साकार मुरली में एक छोटी सी और अति सुंदर परिभाषा दी, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। वैराग्य हो गया ये। सूखा वैराग्य हमारा नहीं है कि हम सूखे बन जाएंगे। मैं पन निकालना, आसक्तियां निकालना, मोह ममता निकालना, ये वैराग्य के सूक्ष्म स्वरूप हैं। धन आपके पास है, कमाओ, रखो, जमा भी करो, यूज भी करो, लेकिन धन में ही बुद्धि रहने लगे, वो राग हो गया, वैराग्य नहीं। जिस चीज में हमारी बहुत बुद्धि लगी रहे वो राग कहलाता है। वैराग्य माना सब कार्य करते भी बुद्धि उससे बाहर हो। सेवा भी हमारी है बहुत ज्यादा, सेवाओं में भी आसक्ति होती ही है। सेवाएं भी अनासक्त भाव से करना, ये याद रखना कि सेवा कराने वाला करा रहा है, ऊपर से हम निमित्त हैं, अनासक्त हो जाएंगे। बाबा करा रहा है, और देखो हम कभी कभी चर्चा किया करते हैं आपस में, हमारे इस महान यज्ञ को, सारा यज्ञ है ना बड़ा सारे संसार में फैला हुआ, सफल करने वाली भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं, कोई कैसी कोई कैसी कोई कैसी, कोई बहुत अच्छी तो कोई खराब भी, लेकिन बाबा उन सब से ही काम लेकर इस संसार को स्वर्ग बना देता है। किसी को ये नहीं कहता तुम मेरे काम के नहीं हो। सुनिए आपने कहानी, यज्ञ रचा, बाबा के पास 5 बच्चे ऐसे थे जो बुद्धि से खाली थे, बिल्कुल जैसे बुद्धि थी नहीं। सविता दीदी अर्जुन को तो जानती है, ऐसे 4 और थे। 2 तो थे लड़कियां, यहीं कहीं घूमने गई पांडव भवन के आगे, फिर आई नहीं, बुद्धि बहुत कम थी। कहां चली गई, चीतों ने खा लिया, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला उनका। बाबा ने ये नहीं कहा, रिजेक्ट कर दिया, तुम मेरे काम के नहीं हो। सबको सेवाओं में लगाकर इस संसार को वो स्वर्ग बना देता है। बना देता है या नहीं, ये नहीं देखता ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं, नहीं। हम भी जीवन में सीख लें, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। बाबा बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे शुरू में, किला, किले बहुत होते थे ना भारत में, अब तो किलों की जरूरत नहीं रही। किले में एक ईंट भी कच्ची हो, दुश्मन को पता लग जाए, उसी से वो किला जीत लेगा, उसे एक ईंट को ही निकाल देगा, उसके सहारे से 2-4 और निकल जाएंगे, पूरा छेद हो जाएगा, टूट जाएगा, सेना घुस जाएगी। इसलिए किसी की कमजोरी देखकर उसे रिजेक्ट नहीं कर देना है। तो कार्य बाबा का है, और हमें हर चीज से अनासक्त होकर वापिस चलना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैं अपनी बात सुनाऊं, अब यहां हम रहते हैं, ये हमारा घर है, अपने घर में तो जैसे भी रहें बहुत सुख मिलता है ना, बाहर जाते हैं कैसा भी मिलता है रहने को, उसमें हम परेशान हो जाएं तो हम जो भट्टी कराने गए उसमें मजा ही नहीं आएगा। कई जगह हमें बेड ऐसी मिलती है छोटी कि अगर करवट ले ली तो जमीन पर आ सकते हैं, लेकिन हम उसमें ही आनंद लेते हैं, जमीन पे आ जाएंगे ठीक है, बाबा संभाले रखेगा। तो किसी भी चीज को, खाना पीना सब चीज, आप यहाँ आते हैं, यहाँ का खाना किसी को नहीं भी भाता होगा, किसी को ब्रह्मा भोजन अच्छा भी लगता होगा, कभी नहीं कभी हाँ, सब होता है। जब मनुष्य बाहर चलता है उसको हर चीज अलग मिलती है ना अपने घर से, उसमें मैनेज कर लेना, उसमें ही आनंद ले लेना, ये अनासक्त वृत्ति है। तो सोच लें कहां हमारी बुद्धि ज्यादा जाती है, उससे बाहर आ जाएं। हर चीज विनाशी है या नहीं, और हमारी खुशी, हमारी स्थिति, हमारी शक्तियां ये अविनाशी हैं, याद रखेंगे तो उनसे बुद्धि निकलती जाएगी। दूसरी एक और छोटी सी साइकोलॉजी आप सब जानते हैं, माताएं बच्चों को भी कराती हैं, बच्चे ने चाकू हाथ में पकड़ लिया हो, छोटे बच्चे ने, तो उसे छुड़ाने के लिए दूसरी अच्छी चीज दे देते हैं ना, वो फेंक देता है, वो ले लेता है। हम सब भी देखें, आपके पास एक जूता चप्पल हो माताओं के पास, बड़ा अच्छा, उससे आपका बड़ा प्यार हो, बड़ा सुख मिलता है ऐसे पहनने से, लेकिन वो जो चप्पल थी 500 की, कोई आपके लिए 5000 की ले आया, बहुत अच्छी, पहन के ही मजा आने लगा, तो 500 वाली से क्या होगा? पट से बुद्धि निकल जाएगी। अब हम याद किया करें क्या, हमारा वैराग बहुत रॉयल है, सुखदाई वैराग, सूखा नहीं, अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करें। सतयुग में क्या क्या था हमारे पास, उसको याद किया करें, तो यहां की चीजों से बुद्धि निकलती जाएगी। इसलिए अव्यक्त बाबा ने पिछले 15-20 सालों में 5 स्वरूपों के अभ्यास पे बहुत बल दिया था। सत्युग में हमारा आदि स्वरूप, वहां की धन संपदा, हम प्रकृति के मालिक, क्या था वो, उसे याद करेंगे तो यहां के करोड़ों रुपए भी लगेंगे कागज हैं। इस पे ध्यान देना, चिंतन कर लेना, कहां आपकी बुद्धि जाती है उससे निकालना है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि बच्चों की पालना न करें, बच्चों को पढ़ाए लिखाए नहीं, उनकी केयर न करें, सब करना है और मदद करनी है और सहज भाव से भी रहना है। दो चीजें मैं सबको सिखाता आ रहा हूं आजकल, और आपके समक्ष भी वो हैं, और डेली थोड़ा थोड़ा उनका अभ्यास कर लेना, बस एक लक्ष्य बना लेना कि हमें ये अभ्यास करना है। एक प्रैक्टिस है, हमें अपने चारों ओर आभा मंडल बनाना है रोज। समझते हैं आभा मंडल, इसको प्रभा मंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में ओरा कहते हैं। समझते हैं सभी, जो न समझते हो हाथ उठाओ, क्योंकि ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस रहेगी। ओरा, आभा मंडल, देवताओं के चित्रों में चारों ओर आपने घेरा देखा होगा, शक्तियों का ऐसा बड़ा घेरा लाइट का, उसको ओरा, आभा मंडल, प्रभा मंडल कहते हैं। सबको बनाना है, एक बार सवेरे एक बार शाम को। अब देखो कैसे बनाना है, मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे। अभी मैं शिव शक्ति हूं, अब लिख लेना बाद में, सब अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, 3-4-5 बार कर लो, मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, देखो निकलती, देखो अपने अंग अंग से, पैरों से, शरीर से, सिर से, आत्मा से, आंखों से, और इन लाल किरणों ने मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बना दिया है। मैं उसके बीच में हूं, बैठा देखो अपने को इस आभा मंडल के बीच में। दूसरी बार, एक बार सवेरे एक बार शाम को, दूसरी बार, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं बहुत पवित्र हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें फैल रही हैं। और चारों ओर एक बहुत तेजस्वी गोल्डन कलर का आभा मंडल बन गया है। बैठ जाए इसके बीच में, ये अभ्यास एक सवेरे एक शाम को कम से कम दो बार रोज करना, मजा आ जाए ज्यादा बार कर लो। इसमें क्या होगा, एक सुंदर सिद्धांत सभी याद रखेंगे जीवन में, जो अभ्यास हम बार बार करेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, बहुत रहस्य है ये, जो अभ्यास हम बार बार करेंगे वही हमारी स्थिति बन जाएगी, उसके ही साक्षात्कार होंगे आने वाले दिन, साक्षात्कार के हैं। अभी तो संगम का बहुत सुंदर समय बाकी है, बहुत सुंदर, जब तक नहीं हुआ, जिस जो सतयुग से भी सुंदर होगा, साक्षात्कार की धूम, अतिंद्रिय सुख, आनंद ही आनंद। तो कुछ होंगे साक्षात्कार करने वाले और कुछ होंगे कराने वाले। तो जिस स्मृति में हम रहेंगे ज्यादा समय, वही हमारा रूप दिखाई देगा। आपने अभ्यास कर लिया, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं, लोग मारने आ गए आपको, ये सब बहुत चलेगा ना संसार में, ग्रह युद्ध होंगे, जहां तहां होंगे, आपको मारने आ गए हैं लोग, आपने फट से याद किया, आपको अभ्यास है तो याद आ गया, मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं, बस उन्हें वही दिखाई देगा, अपनी बंदूकें भी सरेंडर करके चले जाएंगे, ये भी आप ही रख लो, ये खेल खूब चलने वाला आगे। सेफ्टी का साधन ही होगा श्रेष्ठ स्थिति। सेफ्टी के लिए दूसरी भी बात कह देता हूं, हमारे सिर पर सर्वशक्तिवान छत्र छाया है, ज्ञान सूर्य छत्र छाया है, ये जिसने बहुत अभ्यास कर लिया होगा, दूसरे लोगों को वही दिखाई देगा, भगवान है इनके सिर पर, भागो, आएंगे मारने, और ऐसे भागेंगे जिसको कहा जाता है टांग सिर पर रख के भाग गए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। एक अभ्यास औरा प्रभा मंडल बनाएंगे, दूसरा अभ्यास किसी भी एक चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, और माताओं को जो मैं सिखाया है, और बहुत माताओं ने अच्छे अनुभव किए हैं, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, अपने घर की लिख लो और करना ये अभ्यास, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, है या नहीं, या सोचेंगे मेरे तो संकल्प ही बहुत चलते हैं, इष्ट देवी कहां हूं, मैं तो बहुत बंधन में हूं, बंधन देवी हूं, ऐसा तो नहीं सोचते, जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सिद्धांत है, उन्हें ये नहीं पता कि इतना बड़ा सोच भी हो सकता है, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, भाई लोग क्या सोचेंगे, मैं इस घर का इष्ट देव हूं, महावीर हूं, हनुमान, गणेश या विष्णु स्वरूप, तीनों में से कोई भी चुन लेना जो अच्छा लगे। माताएं अपनी अपनी इष्ट देवी चुन लेना जिससे बहुत प्यार हो, महाकाली से प्यार हो, मैं हूं, काला रूप न हो आपका, उसमें रूप की बात नहीं है, विकराल स्वरूप है विकारों पर, इसको काली कहा जाता है, महाकाली, विकारों को जला देने वाली। तो ये अभ्यास भी करेंगे, जितनी बार करेंगे वो आपके ऊपर है, उतना ही आपका घर तीर्थ बनेगा, घरों को तीर्थ बनाना है ये अभ्यास कर लेना, अनुभव करना। मुझे तो माताएं सुनाती हैं, एक माता, उसका पति बहुत बंधन डालता, पवित्रता में बंधन, उसने ये अभ्यास किया और मुझे बताया, आई थी ऐसे भट्टी में, कहा मेरा पति कहने लगा है हमारा घर तो मंदिर लगता है, अब ये कहना शुरू नहीं किया तुम देवी हो, पर हमारा घर तो मंदिर लगता है, थोड़े दिन अभ्यास करने के बाद ये स्थिति बदल गई है। अभी हम चाहेंगे आपके क्वेश्चंस लेना। चंद्रकांत है, चला गया, आ जाओ।